ईरान शताब्दी के झरोके में
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान शताब्दी के झरोके में की एक और कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और रवीश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें।
दोस्तों, दुनिया के अब तक के इतिहास में धर्म मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा है। हमें शायद ही कोई ऐसा समाज मिले जहां धर्म अपने विभिन्न रूपों और परिभाषाओं के साथ उसकी व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान में कोई बड़ा योगदान न देता हो। दुनिया में धर्म से दूरी एक ऐसी घटना है जो मुख्य रूप से 19वीं सदी के यूरोप में मध्ययुग के धार्मिक प्रभुत्व के जवाब में बनाई गई थी और इसे धर्मनिरपेक्षता के रूप में परिभाषित किया गया था। आधुनिक युग की शुरुआत और प्रायोगिक विज्ञान की अद्भुत उपलब्धियों की शुरुआत के साथ धीरे धीरे विचारकों के बीच ये सोच पनपती गई कि प्रायोगिक विज्ञान मानव जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इस विचार ने धर्म को सीमित करना शुरू कर दिया। धर्म केवल उपासना स्थलों और धार्मिक आयोजनों तक ही सीमितता जा रहा था और ये सिलसिला तब तक चलता रहा कि जब तक धर्म को विज्ञान के स्थान पर स्थापित नहीं कर दिया गया। इस स्थिति में धर्म को लेकर दो दृष्टिकोण पैदा हुए। पहले नज़रिए ने धर्म को नैतिकता या केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिकता तक सीमित कर दिया और दूसरे दृष्टिकोण ने धर्मों की बुनियाद को पूरी तरह से नकार दिया।
उदाहरण के तौर पर डेविड ह्यूम के अनुसार वह धर्म की दुनिया और उसके वजूद में आने के लिए मानवीय भय और अज्ञानता को जिम्मेदार बताते हैं। डेविड ह्यूम के मुताबिक प्राकृतिक घटनाओं के कारणों और उनके अस्तित्व में आने के बारे में हमारे पास जानकारी का अभाव और उसके प्रति हमारी अज्ञानता इस बात का कारण बनती है कि मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं का श्रेय ईश्वर को देने लगता है। ऐसी स्थिति में आधुनिक मनुष्य स्वयं को शिखर और पूर्णता पर देखता है और वह अतीत और इतिहास की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता है। इस भ्रामक अहंकार ने इंसान को धर्म और मान्यताओं से दूर कर दिया और केवल प्रौद्योगिकी के विकास और भौतिक लाभों जैसे आदेशों के बारे में सोचने लगा। 20वीं सदी के पहले दशकों में पश्चिमी दुनिया अधिक तेजी से औद्योगिकरण की ओर बढ़ी। इस युग में पश्चिमी मनुष्य ने स्वयं को किसी भी विद्यालय के बंधनों से मुक्त कर लिया और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर मुड़ गया। वह दुनिया में गैर प्रतिबद्धता की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था, लेकिन भीतर से खालीपन की भावना और बाहर हिंसा और बड़े युद्धों की घटना जैसे परिवर्तनों ने ऐसे इंसानों को हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि विज्ञान की प्रगति के साथ उन्हें सुख सुविधा भरा बेहतर जीवन गुजारने को मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह खुद को असुरक्षित, पहचानहीन और खालीपन महसूस करते थे।
दोस्तों, 20वीं सदी में मानव जाति के संक्रमण के साथ वैज्ञानिकता ने विज्ञान से मोहभंग का मार्ग प्रशस्त किया। मैकगिल विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर चार्ल्स टेलर व्यक्तिवाद को 20वीं सदी में मानवीय चिंता का पहला स्रोत मानते थे। टेलर के अनुसार ये आत्म केंद्रितता मानव जीवन को अदूरदर्शी और अर्थहीन बना देती है और लोगों को दूसरों पर ध्यान देने से भी रोकती है। ऐसे में इंसानों को ऊंचे लक्ष्यों की समझ नहीं रह गई है और किसी चीज़ या दूसरों के लिए खुद को बलिदान करना उनके लिए अर्थहीन है। इस स्थिति में प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक कॉल गुस्ताव जुंग जैसे विचारकों ने जीवन के अर्थ और उच्च अवधारणाओं के लिए समकालीन मनुष्य की आवश्यकता के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि निसंदेह समकालीन मनुष्य द्वारा सद्गुणों एवं सत्कर्मों का अपमान स्थायी नहीं है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संगठन की उपयोगिता का अनुभव किया है और साथ ही उन्होंने यह भी देखा है कि ये नई प्रौद्योगिकियां कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। अब आधुनिक मनुष्य ने अपना ध्यान बड़े पैमाने पर बाहरी भौतिक मामलों से हटाकर अपने आंतरिक विकास की ओर केंद्रित कर दिया है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि मनुष्य अपने आंतरिक जीवन से कुछ ऐसी अपेक्षा करता है जो उसे बाहरी दुनिया से प्राप्त नहीं हो सकती। वो जीवन का अर्थ तलाश रहा है।
इस बीच पूर्वी दुनिया में धर्म की स्थिति पश्चिम की तुलना में अधिक दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि पश्चिम में कम से कम समय पर ईश्वर व्यक्तित्व की दुनिया में आध्यात्मिकता और नैतिकता के रूप में जीवित और सक्रिय थे, लेकिन पूर्व में धर्म को जनता की अफीम और पूंजीवाद का एक उपकरण माना जाता था। भौतिकवाद के प्रसार के साथ अस्तित्व की दुनिया की सीमा पदार्थ को सौंपी गई और परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार के श्रेष्ठ ईश्वर के अस्तित्व की संभावना को खारिज कर दिया गया। इस्लामी दुनिया में धार्मिकता की स्थिति में धर्म को राजनीति से अलग करने के कारण बनी और इसके कारण इस्लामी देशों में कोई भी सरकार योजना और सामाजिक संबंधों के लिए धर्म के पास नहीं गई। दरअसल इस्लामिक देशों की सभी सरकारों ने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार कर लिया था। इस्लामी जगत की एक अन्य समस्या पश्चिमीकरण थी। इस बीमारी के कारण धर्म को पश्चिमी जीवन संबंधों के साथ सामंजस्य बनाने के सभी प्रयास किए गए। इस काल में यदि कोई इस्लाम की रक्षा करना भी चाहे तो वह इस्लाम की शिक्षाओं को पश्चिमी शिक्षाओं के अनुरूप ढाल लेता था। पश्चिमी विज्ञान में इतनी मौलिकता थी कि इस्लाम को प्रायोगिक विज्ञान की शिक्षाओं के अनुरूप ढालने की पूरी कोशिश की गई।
दोस्तों, इस बीच 20वीं सदी के मध्य में और उसके चौथे और पांचवें दशक के साथ ही दुनिया आश्चर्यजनक रूप से सामाजिक क्षेत्रों में धर्म के पुनरुत्थान की साक्षी रही। विचारकों के अनुसार धार्मिक विचारों और सामाजिक आंदोलनों की वैश्विक वापसी 20वीं शताब्दी में हुई सबसे अप्रत्याशित घटनाओं में से एक है। इस तरह के विकास की अप्रत्याशितता इस तथ्य के कारण है कि इस घटना ने राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता के बारे में स्वीकृत राय और विचारों को गंभीर रूप से चुनौती दी है। 20वीं शताब्दी के मध्य में ईरान में इस्लामी क्रांति की शुरुआत के साथ दुनिया के एक कोने में एक महान परिवर्तन हुआ और धार्मिक सोच पर आधारित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के गठन से दुनिया को अवगत कराया गया। साथ ही इस दौरान दुनिया का धर्म की क्षमताओं का एहसास हुआ। ईरान की इस्लामी क्रांति ने डेविड इस्माइल दुर्खिम और मैक्स वेबर जैसे विद्वानों के विचारों को बदल दिया। उन दो समाजों के अनुसार तर्क संगतीकरण की प्रक्रिया में वे पवित्र तत्वों को हाशिए पर रख देते हैं और इस प्रकार वे उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं ताकि तर्क संगता उनकी जगह ले ले। लेकिन इस युग में धर्म की उपस्थिति तर्क संगता और विज्ञान के साथ थी।
ईरान की इस्लामिक क्रांति का संदेश था कि मानव सम्मान और प्रतिष्ठा धर्म और उच्च आध्यात्मिक मूल्यों में निहित है और केवल ईश्वर के महान पैगंबरों के मार्ग पर चलकर ही न्याय और आध्यात्मिकता की खुशबू दुनिया भर में फैल सकती है। इस्लामी क्रांति ने दुनिया से वादा किया कि मूल्यवान धार्मिक शिक्षाओं पर भरोसा करके मानव जीवन के सभी पारंपरिक मामलों जैसे कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून और सामाजिक रीति रिवाजों के लिए एक सही और व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत करना संभव है। धर्म की उत्पत्ति धार्मिक नेतृत्व और दैवीय समर्थन से उत्पन्न आदर्शों के साथ 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति का वर्तमान दुनिया के तीन क्षेत्रों पूर्व और पश्चिम और इस्लामी दुनिया पर कई प्रभाव पड़ा। धर्म विरोधी पूर्वी ब्लॉक पर इस क्रांति का प्रभाव गैर धार्मिक पश्चिमी ब्लॉक की तुलना में कहीं अधिक गहरा था। इस सदी में इस्लामी जगत अपने शासकों की अक्षमता और अत्याचार के साथ साथ एक और आंतरिक अव्यवस्था और दूसरी ओर विदेशी उपनिवेशवादियों के साथ संघर्ष के कारण कई समस्याओं से जूझ रहा था। वहीं ऐसी स्थिति में ईरान की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर आवश्यक अधिकार न होने के कारण निरंकुश और अयोग्य शासकों ने देश की संस्कृति और सभ्यता को ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां से विकास और प्रगति का आधार छीन लिया गया था।
दोस्तों, 20वीं सदी में विश्व स्तर पर ईरान की इस्लामी क्रांति का उदय धार्मिक विचारों पर पुनर्विचार और क्रांतिकारी इस्लाम के उदय की शुरुआत थी। इस्लामी क्रांति में जो हुआ वो ये था कि एक धर्म एक राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त करने में सक्षम हो सकता था। दूसरे शब्दों में धर्म पर आधारित राष्ट्र गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि ईरान की इस्लामी क्रांति देखते ही देखते दुनिया भर के दबे कुचले और गुलामी भरी जिंदगी गुजारने वाले राष्ट्रों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आई। अंततः एक धर्म किसी राष्ट्र के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भूमिका निभाने में सक्षम हुआ। वहीं इस्लामी क्रांति के समय मार्क्सवादी विचारधारा वाले दुनिया के 50 से अधिक देशों को इस्लामी क्रांति की महान सफलता का सामना करना पड़ा। साथ ही उनके लिए ये भी सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ईरान में धर्म जनता की अफीम क्यों नहीं बन गया। इस्लामी क्रांति की जीत के 6 महीने से भी कम समय में 30 से अधिक देशों में जिनकी विचारधारा मार्क्सवाद थी, मस्जिदों और उपासना स्थलों को फिर से सक्रिय किया गया और धर्म को उनके सामाजिक संबंधों में अपने लिए जगह मिली।
कुल मिलाकर ईरानी राष्ट्र की इस्लामी क्रांति ने अपनी धार्मिक प्रकृति के साथ मुस्लिम समाज में इस्लाम के प्रति जागरूकता और उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिरोध, न्याय की इच्छा और स्वतंत्रता की चाहत को बढ़ावा दिया। यह स्वाभाविक था कि ईरान की क्रांति ने शक्तिशाली और दबंग देशों की वास्तविक चेहरे से नकाब हटा दिया और जो कमजोर देशों के लोगों का उत्पीड़न करके उन पर राज किया करते थे और वहां के लोगों के अधिकारों को अपनी ताकत के बल पर अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। यही कारण था कि विजय के प्रारंभ से ही इस क्रांति को नष्ट करने के अनेक प्रयास किए गए। पश्चिम में धर्म विरोधी और इस्लाम विरोधी मुद्दे किसी भी अन्य चीज से अधिक धर्म के प्रति उनके डर को दर्शाते हैं, जो मानव समाज की प्रगति की नींव, मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताओं पर ध्यान देने में देखता है। लेकिन जितना उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने और धर्म विरोधी अभियान चलाया, उतना ही इस्लाम दुनिया में फैलता चला गया। हम इस सत्य से इनकार नहीं कर सकते कि मनुष्य को व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से धर्म की आवश्यकता है। इसीलिए जब किसी ने एक रूसी लेखक एवं विचारक टॉलस्टॉय से पूछा, ईमान अर्थात विश्वास क्या है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि विश्वास वह है जिसके साथ व्यक्ति जीता है। आस्था मानव जीवन की पूंजी है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।